हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ। मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर भावना और आज हमारे साथ हैं हमारे कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स जो कि यहां पर चर्चा के लिए आए हैं। मैं पहले उन्हें इंट्रोड्यूस कर देती हूं। मिसेज रेनु बाली जो कि टेंडर हार्ट एनजीओ को हेड कर रही हैं, मिसेज अख्तर जो कि एक सोशल वर्कर हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया से एसोसिएटेड हैं, डॉक्टर सुजाता जो कि सीनियर लेक्चरर हैं इंग्लिश में मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर छवि भार्गव शर्मा जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और हेड हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट मानव रचना से, सू वुडमैन जो कि यूएसए की जर्नलिस्ट हैं और एक राइटर भी हैं विमेन इश्यूज पे स्पेशलाइजेशन करते हुए। यहाँ आप सभी लोगों का स्वागत है और हमारी चर्चा का विषय है वो कौन सा समय है जब हम अपनी बेटियों के पारिवारिक समस्याओं में उनके माता पिता का हस्तक्षेप होना चाहिए और उनकी क्या भूमिका होती है। सबसे पहले मैं मिसेस वाली आपसे जानना चाहूंगी, आप बताइए वो कौन सी ऐसी रेखा है जब हम ये तय कर सकते हैं कि हम अपनी बेटियों और बहनों की पारिवारिक समस्याओं में हस्तक्षेप करें।
मैं समझती हूँ अगर एक बेटी अपने माँ बाप के पास आती है एक समस्या लेकर, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो चाहे कोई भी पारिवारिक समस्या हो, तो माँ बाप का हस्तक्षेप इमीडिएट होना चाहिए।
मैं डॉक्टर भार्गव से भी पूछना चाहूंगी आपका क्या कहना है।
जैसे कि मिसेस बाली ने कहा है कि इमीडिएट होना चाहिए, स्पेशली जहाँ पे वायलेंस होता है। हम दूसरी बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि जब एक थप्पड़ पड़ा है या डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हम कहते हैं, इट कैन बी एनी काइंड। तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस है तो उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें तो आपको जब पता चले तभी। मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि ये हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि आपको अलग के लिए बात करनी चाहिए, बट हाँ पेरेंट्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये चीज हम नहीं सहेंगे।
मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मेरी जानकारी में एक फैमिली ऐसी है, उस परिवार में ऐसा हुआ कि बेटी के शादी के समय काफी तरह की डिस्ट्रप्शन हो गए और उनके जो इन-लॉज थे उन लोगों ने काफी इस तरह की समस्याएं क्रिएट कर दी जिनसे कोई भी नॉर्मल स्थिति में उसको सही नहीं माना जा सकता है। तो ऐसा हुआ कि उस लड़की के पेरेंट ने, उसके फादर ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं अपनी बेटी को विदा नहीं करूंगा। तो मेरे समझ से उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि उन्होंने इतना सोसाइटी के बहुत से दबाव के बावजूद भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें अपनी बेटी को ऐसे परिवार के साथ इस टाइम में कभी नहीं भेजना है। तो मैं समझती हूँ कि जैसा अभी हमारे दो एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि हमें तत्काल ही पेरेंट्स को या समाज के सदस्य के नाते हमें तत्काल ही निर्णय लेना पड़ेगा और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि ये बात पानी सर से ऊपर न चला जाए।
इससे सकता मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप मुझे बताइए तत्काल हम किस चीज में माने। क्या तत्काल तब वो कि जब बेटी पहली बार घर आकर बताती है कि मुझे कोई समस्या है, या आप समस्या की गंभीरता देखेंगी?
हम लोगों को ये एज ए माँ बाप हम लोगों को ये समस्या बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए कि किसी तरह का भी जो वायलेंस होता है वो टॉलरेट ना किया जाए, और बेटियों को भी अपने माँ बाप को सच्चाई से बताना चाहिए और उसी तरीके से माँ बाप को भी उसको गंभीरता से लेकर और सोच समझ से उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए।
मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि मैं समस्या को सिर्फ एक डोमेस्टिक वायलेंस लेकर नहीं समझती हूँ। कोई भी समस्या अगर एक लड़की के साथ आ रही है, चाहे वो आप दहेज लेके लीजिए या आप कोई और प्रॉब्लम आती है जैसे एडजस्टमेंट, अपने हस्बैंड के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रही है किसी भी वजह से, चाहे वो अपनी तनख्वाह को लेके है, तनख्वाह किसको दी जाए घर में अगर वो वर्किंग लेडी है, और अगर वो वर्किंग नहीं है तो भी हस्बैंड के साथ भी कोई समस्या उठ सकती है। तो कब माँ बाप को बीच में इंटरफेयर करना चाहिए? मैं समझती हूँ कोई भी स्थिति में अगर एक लड़की को समस्या आ रही है अपने परिवार में और वो अपने माँ बाप तक पहुँचती है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो माँ बाप को इमीडिएटली इसके ऊपर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और जो उनको सही लगे, चाहे वो लड़के को बुला के बात करें या उसके ससुराल वालों को बुला के बात करें, क्योंकि इस बात को छोड़ देना और लड़की को ये बोलना कि नहीं तुम थोड़ा एडजस्ट करो क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि अभी शादी हुई है और एकदम से प्रॉब्लम आ गई, ये डर के एक माँ बाप अगर पीछे हो जाता है लड़की को लेकर, तो वो लड़की के लिए आगे चल के और बड़ी समस्या बन सकती है। तो मेरा हिसाब से जैसे ही माँ बाप को पता लगता है कि एक लड़की की ये समस्या है किसी भी रूप में है, वॉयलेंस तो सबसे बड़ी और बहुत ही खतरनाक एक किस्म की मैं बीमारी बोलूंगी इसको, डोमेस्टिक वॉयलेंस तो है ही बट इसके अलावा और भी छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर एक लड़की उसको समस्या लेकर आती है तो माँ बाप को इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए।
डॉक्टर छवि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बताइए, मान लीजिए कि आपकी बेटी, बहन या कोई भी परिवार की बेटी आती है आपके पास, से ये राय नहीं देंगी कि बेटा आप घर में एडजस्ट करने की कोशिश करिए?
अब आप क्योंकि आपने एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे पूछा है, तो हमेशा हर चीज के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि दूसरा पहलू क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि बात करना, क्योंकि जो भी चीज हम लेते हैं अगर बच्चे बताएगा नहीं तो इतना विश्वास तो हमें अपने बच्चों को इतना विश्वास हम पे होना चाहिए और हमें उनके अंदर ये विश्वास जगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो बताते भी नहीं है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, जब तक बताते हैं तब तक बहुत कुछ सह चुके होते हैं। तो हमें ये कहना चाहिए कि बच्चों को कि सहना बहुत अच्छी बात है, कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो बात तो करे, टॉक 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 इट आउट। हमारी समस्याएं हमारा ट्रेजर नहीं है जिन्हें हम छुपा के रखें, उनके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, हम अपने बच्चे को जानते हैं कि उसमें कितनी क्षमता है, और जब दूसरे नए एनवायरमेंट में जाएगा तो वो जितना, अगर आपको लगता है कि एक उसके उंगली में छोटा सा पिन यहाँ छुपता है तो वो वहाँ पे भी वैसा करेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। मतलब आप अगर दूसरे घर में जाओगे आप बहुत कुछ सहोगे, तो जब वो बताए तब आपको खुद देख लेना चाहिए। एक बार लड़के से रिश्ते में ये होना चाहिए कि आपको लड़के को भी बिठाना चाहिए, दोनों से बात करें, क्योंकि रिश्ता है, हम यहाँ अनजान लोगों की बात नहीं कर रहे, हम कोई किसी दूसरे रिश्ते में थोड़ी इंटरफेयर कर रहे हैं, हम तो अपने दामाद या वो आपका या आपका जो भी रिश्तेदार है, अगर आप उसकी बहन है तो आप अपने जीजा को बुला के बात कर रहे हैं, और ये हक है, परिवार में हक होता है कि हम पूछ सकते हैं। और ये तो जब भी हर चीज को गंभीरता से तो लेना चाहिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि इसको बहुत हल्के से लें।
पर क्या आपको लगता है कि हर बात हमारी सिर्फ बात कर लेने से सुलझ जाती है? क्या हर मसला ऐसा है जो सिर्फ बात करने से सुलझ जाएगा?
बात करने से तो सारी चीजें सुलझ ही जाती है।
देखिए,
हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे,
शुरुआत हम लोग बातचीत
से शुरुआत होती है, शुरुआत तो बातचीत से ही होती है, और धीरे धीरे अगर दोनों समझ जाएं, लड़का और लड़की, के इस बातचीत से समझ सकते हैं हम लोग और इससे मामला सुलझ सकता है, तो वेल एंड गुड।
देखिए, सबसे पहले समस्या कैसे पता लगती है? आप अगर लड़की बिल्कुल चुप है तो हमें नहीं समझ आएगा कि इसकी कोई समस्या है, देख के कभी पता लगता है। बहुत सेंसिटिव पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने बड़े केयरफुली अपने बच्चे को अगर पाला होता है तो थोड़ा हाव भाव शक्ल सूरत पे भी आ जाते हैं, और शक्ल सूरत देख के भी माँ बाप ये जांच कर लेते हैं कि हमारी बच्ची जो है, लड़की जो हमारी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो हाव भाव भी देख सकते हैं माँ बाप, और उसके साथ साथ बात करना तो बहुत जरूरी है। पूछा जाता है बच्चे से कि क्या प्रॉब्लम है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, तो पहली जो समस्या अगर आपको समझनी है वो बातचीत से ही होती है मेरे हिसाब से।
डॉक्टर सुजाता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मान लीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम है, अगर बेटी आके कहती है कि मेरा पति मुझे मारता है, तो आप क्या समझती हैं, आप इस पर क्या राय देंगी ऐसे में कि उसे क्या करना चाहिए?
आप पेरेंट्स के बारे में पूछना चाह रही हैं कि उनके माता पिता को, बच्ची के माता पिता को क्या करना चाहिए?
बिल्कुल,
मेरे समझ से तो यही करना चाहिए कि उन्हें देखना चाहिए कि बेटी, क्योंकि हम बच्चों में भी अलग होता है, हो सकता है कि हमने बच्चे को इस तरह से पाला हो कि थोड़ी सी अगर बातचीत होगी तो उसने आकर के ऐसा कह दिया, पर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, जनरली ऐसा होता है, मैं जनरल की बात बता रही हूँ कि आमतौर पर लड़की तभी आकर के अपने पेरेंट्स को शिकायत करेगी जब बात काफी आगे बढ़ चुकी होगी, तो वैसे में पेरेंट्स का बिल्कुल बहुत बड़ी दायित्व हो जाती है, कुछ प्रॉस एंड कॉन्स देखें, सबसे पहले देखें कि आखिर बेटी ने शिकायत क्यों की है, जरूर कोई बात होगी तभी उसने शिकायत की है, तो मेरे समझ से उन्हें तत्काल उनको एक्शन लेना पड़ेगा। अब वो जिस तरीके से एक्शन ले, पर उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा, वो तत्काल ही होना पड़ेगा, उसके लिए वेट करने से मेरे समझ से वो उचित नहीं होगा वेट कर।
सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू ऑल्सो, what do you have to say?
Well, I think first of all, there's research that shows that men who abuse women are men who have been abused themselves or seen abuse in their household. It's something that's very much passed on. And similarly, I think a woman who doesn't take her daughter's side or who tells her daughter that she has to adjust is a woman who's grown up with an enormous fear of social pressure, that it's more important for the daughter to conform to being a good wife than it is to look after her safety. And those are things that will only change incrementally. Mothers have to stop being afraid of what society says in order to teach their daughters to stand up for themselves.
Mrs. Wali, मैं आपसे जानना चाहूंगी, समाज कितनी बड़ी भूमिका निभाता है इसमें?
देखिए, समाज तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि हर माता पिता समाज के दायरे में रहते हैं, हर बच्चा समाज के दायरे में रहता है, और समाज के डर से ही वो सारा जो भी करता है वो समाज के डर से करता है। अगर एक माँ बाप थोड़ा नजरअंदाज करते हैं और लड़की को बोलते हैं नहीं बेटा तुम थोड़ा एडजस्ट करो,
तो वो एक समाज के डर से बोल रहे हैं, वो समाज को आगे रख रहे हैं, बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए समाज है कि समाज उनको क्या बोलेगा। कल समाज ये बोलेगा कि तुमने अपनी बेटी की परवरिश अच्छी नहीं करी, या तुम्हारी बेटी एडजस्ट नहीं कर रही है, तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है। तो वो एक समाज का डर होता है और समाज के डर से माँ बाप जो हैं जल्दी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। और मैं समझती हूँ ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के बीच में कि वो समाज से डर कर अगर हर काम करते हैं तो इसमें कभी कभी देरी भी हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे हम कई न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ रहे हैं कि लड़कियां सुसाइड कमिट कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। और मैं सबसे ज्यादा अगर एक लड़की सुसाइड करती है तो मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझती हूँ कि माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। अगर माँ बाप ये आके बोलते हैं कि हमारी लड़की ने हमें बताया था, दो तीन बार हमें पता है कि लड़की को प्रॉब्लम हो रही थी और आज उस लड़की ने सुसाइड किया है, तो उसके इन-लॉज को पकड़ा जाए और हस्बैंड को पकड़ा जाए, तो मैं समझती हूँ वो भी इक्वली एट फॉल्ट है। अगर इन-लॉज का फॉल्ट है तो कुछ हद तक जब उन्हें ये मालूम पड़ा था कि लड़की को प्रॉब्लम आ रही है और लड़की भी कुछ देर चुप रहती है समाज के डर से, परंतु अगर लड़की पहुंचती है अपने माँ बाप तक और माँ बाप समाज के डर से कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो मैं समझती हूँ ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि वही लड़की आगे चल के सुसाइड कमिट करती है। अगर उस लड़की को जरा सा भी सपोर्ट हो कि भाई मैंने अपने माँ बाप को बता दिया है और अब मेरे माँ बाप ने मुझे बोला है कि हम आके बात करेंगे, हम आके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो लड़की को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक ताकत आती है उस लड़की में अपनी समस्या से जूझने की। तो मैं समझती हूँ अगर आप समाज को देखते हैं तो समाज का बहुत बड़ा दायरा है और समाज में रहकर एक माँ बाप जो है समाज से डर कर अगर चुप रहते हैं तो कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो माँ बाप भी इक्वली उतने ही कल्प्रिट है जितने की इन-लॉज।
मिसेस अख्तर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एक सोशल वर्कर हैं, ऐसी समस्याएं आपके पास आती रहती होंगी, कभी कभार आपने सुना भी होगा, क्या आप वाकई समझती हैं कि एज अ सोशल वर्कर हम लोग मदद कर पाते हैं ऐसे लोगों की?
बिल्कुल मदद कर पाते हैं, क्योंकि काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है ऐसे लोगों के लिए, और उनको समझाना कि एक तो हमारी तरफ से एज अ सोशल वर्कर हम उनको सपोर्ट करें और हमें उनके माँ बाप को भी ये आश्वासन देना चाहिए कि वो अपनी बेटियों को आश्वासन दें कि वो हमेशा उनको सपोर्ट करें। कभी भी उनको ये ख्याल नहीं आना चाहिए मन में कि पता नहीं हम अपने मायके वापस जाके हमें माँ बाप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। उनको हमेशा ये बताना चाहिए कि बेटा कभी भी आपके पास समस्या ऐसी आई हो, वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग बाई यू। तो ये उसके जब लड़की के मन में हो तो वो मुझे लगता है हमेशा अपने माँ बाप से कम्युनिकेशन जारी रखेगी और वो हमेशा अपने समस्याओं को बताएगी और हल भी हो सकती है इन टाइम।
डॉक्टर छवि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, दरअसल बहुत सी बार देखा गया है कि माता पिताओं में एक झिझक होती है कि बेटी घर वापस आ जाएगी, कल को अगर ऐसी कोई परेशानी होती है, इस चीज के बारे में आप क्या कहते हैं? इन माता पिताओं को हम कैसे समझाएं कि अगर बेटी घर आ जाएगी तो शायद वो उतना बुरा नहीं होगा जितना बेटी इस दुनिया से चली जाएगी?
जैसे कि मिसेस पाली ने कहा था कि समाज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। समाज बाहर नहीं है, समाज हमारे अंदर है, हमारे दिमाग में हमने समाज का बहुत बड़ा, जैसे हम कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो हमारे अंदर है, हमने वो सारे नॉर्म्स अपना है। एक तो मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि अगर समस्या आपको लग रहा है आप नहीं कर सकते, आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, प्रोफेशनल हेल्प, फैमिली काउंसलर के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, लेकिन कई समस्याओं का हल वहां से ही निकल आएगा, क्योंकि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, एक बिना बायस, क्योंकि दोनों इन्वॉल्व पार्टीज रहती है, तो एक पर्सपेक्टिव, कई चीजें हैं जो हमें नहीं पता है, वो एक प्रोफेशनल की हेल्प आपको लेनी चाहिए। और काउंसलिंग से ही पेरेंट्स का नजरिया बदल सकता है, क्योंकि ये जो है समाज एक कोई रियल चीज तो है भी नहीं, वैसे भी नहीं है कोई, आपके घर में कोई आपके समाज के आस पड़ोस के लोग हैं, लेकिन उसमें उनसे झेलने के लिए बहुत सारे लोग अपनी राह पे चलते हैं ना, तो उनमें वो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक स्ट्रेंथ आती है, वो ही आपको ताकत देती है कि मैं अलग चले जाऊं या मैं अपनी ओन राह निकालूं। तो ये चीज आपको पेरेंट्स में भी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तभी तो वो समाज पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम उनको एम्पावर करेंगे, पेरेंट्स को एम्पावर करेंगे, तभी तो पेरेंट्स अपने बच्चों को एम्पावर करेंगे। एक और एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है और मेंटल इंडिपेंडेंस भी, लेकिन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको ऑटोमेटिकली, अगर लड़कियां कमाती हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिसीजन लेना आ जाता है, क्योंकि आपको पता है आप सड़क पे नहीं होगे ना आप एक किसी पे बोझ होगे। और फैमिली पेरेंट्स को ये लगता है जो उनका उनका तो सोशल है, उसको तो आप थ्रू काउंसलिंग वो नजरिया बदल सकते हैं। पेरेंट्स जब लड़की पे कॉन्फिडेंस, जब लड़की खुद अपने पैरों पे खड़ी होगी तो पेरेंट्स भी साथ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है ना सिर्फ।
मिसेस वाली आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि अगर एक औरत इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है तो क्या उसको कम परेशानियां आती हैं अपनी जिंदगी में झेलने से? या
देखिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एक लड़की को उसका आत्मविश्वास तो जरूर बढ़ाती है, परंतु ये नहीं हो सकता कि वो लड़की जो है कल को, क्योंकि अभी रिसेंट हमने न्यूज़पेपर में एक केस सुना था जिसमें एक अच्छी और पढ़े लिखे परिवार की लड़की ने सुसाइड कमिट किया। तो ये मैं नहीं कहूंगी कि अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट लड़की है तो वो ऐसा चीज नहीं कर सकती है। तो उसको क्या ऐसी प्रॉब्लम आई उसको कि उसने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के होने के बावजूद, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसको सुसाइड कमिट करना पड़ा? तो ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एक ओनली वजह नहीं होती है कि जिससे कि एक लड़की सुसाइड करती है या प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी। बहुत सारे और भी दायरे होते हैं जिसमें कि एक लड़की को किस तरीके से उसको उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, किस तरीके से उसको पाला पोसा गया है, और उसके दिमाग में माँ बाप ने एक कितनी सपोर्ट देने का उसके दिमाग में डाला हुआ है। उसके अगर दिमाग में ये बात है कि मुझे मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है, मेरा पूरा मायका है जिसमें भाई बहन माँ बाप चाचा चाची मौसी मौसा सब हैं, तो जब एक मैं समझती हूँ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के साथ साथ एक मानसिक इंडिपेंडेंस भी होना बहुत जरूरी है। जब एक लड़की को ये दोनों चीजें मिलती हैं, दोनों चीजों का मिश्रण उसको हर प्रॉब्लम से आगे, हर प्रॉब्लम से उसको फाइट करने की एक ताकत दे देता है।
इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तो एक केवल एक स्मॉल चीज है, मेंटली इंडिपेंडेंस दिस इज ए स्टेप बाय विच वी कैन गेन मेंटल इंडिपेंडेंस।
और ये भी एक और बात है कि हम लोग ये अपने बच्चों को बताते हैं कि शादी के बाद बस सुखी परिवार है और ये सब अच्छी सी इमेज बना देते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लाइफ
जैसे फिल्मों में बोला गया है,
ने इतना बुरा प्रभाव डाला है सब पर कि वो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि बहुत अच्छी लाइफ है, इन एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। असलियत में ऐसा नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उनके साथ जूझना ये लड़कियों को सिखाना चाहिए।
आई थिंक यू कैन टेल अस फर्दर व्हाट इज हैपनिंग इन यूएसए, वेदर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस डजंट मेक द गर्ल्स और द वुमेन टू कमिट सुसाइड और कल्प्रिट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन स्पाइट ऑफ द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। आई थिंक यू फ्रॉम यूएसए शील बी एबल टू टेल अस मोर अबाउट इट।
Of course there's domestic violence in the USA. Of course there is. There's domestic violence all over the world. I think what shocks Americans about the Indian forms of domestic violence are that the whole family colludes in it.
Yes.
That domestic violence in the US is between a husband and a wife. And it's so shocking to find out that in-laws have actually been in on the planning of it, that it becomes a murder, a premeditated murder, as opposed to an act of passion, as it's called often in the States. In the States, I don't think economic independence or dependence is an issue. It's much more of an emotional, behavioral thing in the States, and there's also a great many organizations where women can go and seek safety. So she wouldn't turn to her mother necessarily for approval to leave the marriage if she felt threatened, and a lot of women don't. I mean, there is a very codependent element in domestic violence. You often find that the pattern repeats and repeats, and the woman is just simply afraid to leave the man. When she does leave the man, there are places, and she can find them easily, where she can go for shelter and where the man won't be able to get to her.
एक और बात मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर छवि भार्गव से, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या काउंसलिंग वाकई इस चीज में मदद करती है? मेरा मतलब काउंसलिंग से सिर्फ लड़की की काउंसलिंग की बात नहीं है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की काउंसलिंग से है।
काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है, क्योंकि आजकल सब लोग काउंसलिंग बोलते हैं, एक प्रोफेशनल जो काउंसलर है, एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होता है, एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट है जो ट्रेंड है इसी तरह की चीजों में। और यहाँ पे काउंसलर का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे काउंसलर का मतलब है एक फैमिली काउंसलर, मतलब फैमिली एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट जिसे ट्रेनिंग दी गई है कि फैमिली और मैरिटल प्रॉब्लम्स को कैसे डील करें। तो इनके पास जाएंगे तो ये नहीं है कि मैजिकल क्योर है, लेकिन फर्क बहुत पड़ता है। सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे फिर भी पेरेंट्स को हम सपोर्ट सिस्टम मानते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज है, कई चीजें आप अपने माँ बाप को नहीं बताते हो। बहुत सारी चीजें आप नहीं बताओगे, आप एक प्रोफेशनल काउंसलर को बता दोगे। प्रोफेशनल इसलिए वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक है, ये आप और मैं नहीं बैठ के कर सकते हैं जब तक की ट्रेनिंग नहीं हुई। ये
कई बार देखा गया है
या बूढ़े लोग नहीं हो सकते,
क्योंकि कई बार देखा गया है कि ऐसी समस्याओं से लड़कियां डिप्रेशन की शिकार हो जाती हैं।
और डिप्रेशन ही एक मेजर कारण है सुसाइड का। अगर एक लड़की सुसाइड करती है या जो भी जना करता है, वो बहुत सारे साइंस देता है। प्रोलॉन्ग डिप्रेशन, अगर बच्चे को कोई जगह नहीं मिले जहाँ पे हम बात करें या किसी से जाके बात करें, तभी वो सुसाइड में कन्वर्ट होगी। वरना कोई जो भी डिप्रेशन में है, वो एक ना एक जगह तो ट्राई करेगा कि मैं एक बार बात कर सकूं। जब उसे कोई भी वो नहीं, इमोशनल आउटलेट ही नहीं मिलता, तभी वो जाके ये आखिरी स्टेप लेता है। लाइफ लेना बहुत डिफिकल्ट।
यहाँ पर मैं एक बात आपसे और पूछूंगी कि ये जो ब्राइड बर्निंग का इशू जो चल रहा है कि एक लड़की को जला दिया जाता है और उसमें सारे इन-लॉज इन्वॉल्व होते हैं, तो एक लड़की को जब इस लेवल तक ये जब करते हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगी? क्या ये इसमें लड़की ने अपनी समस्या को समाधान करने के लिए उसको समय नहीं दिया परिवार ने, ये कैसे हो जाता है?
ब्राइड बर्निंग बहुत सारे कारण है, आपका सोशलाइजेशन ही है। अभी आप बात ही कर रहे थे कि मुझे बड़ा ही करा गया है कि लड़की को एडजस्ट करना चाहिए, और यहाँ पे मैं अपर क्लास की नहीं बात कर रही, एक लोअर लेवल मिडिल क्लास
सारी क्लासेस
की। गरीब में देखिए टैबूज जहाँ पे ज्यादा होंगे वहाँ पे सहना ज्यादा पड़ता है। ये आपका फिनोमेना जो है ये लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास का है, और ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हम सहना सिखाते हैं इतनी क्षमता। इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पेरेंट्स में इतनी इकोनॉमिक क्षमता ही नहीं है। डाउरी डाउरी डाउरी, आप और दो और दो और दो, तो जब उनमें क्षमता नहीं है तब वो बच्चे के ऊपर भी प्रेशर डालते हैं। अगर मुझे पता है कि मेरे माँ बाप के पास मैं जाऊंगी तो उनके पास अपना घर को चलाने का पैसा नहीं है, तो वो मुझे कैसे संभालेंगे? इसलिए लड़की तो बहुत सारा सहती है। ये मर्डर है, प्लेन मर्डर।
मुझे लगता है कि एक लड़की को कुछ एप्रिहेंशन होती होंगी कि ये मेरा और मेरे परिवार का रिलेशनशिप इतना खराब हो चुका है कि ये मुझे कुछ भी कल को कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक लड़की को इतना एम्पावरमेंट देना चाहिए मेंटली कि एक लड़की इस चीज को, अपने आप को इस चीज से बाहर निकाल सके। मैं एक ये समाधान के लेवल पर आ रही हूँ कि एक लड़की को किस समय पर अपना परिवार छोड़ना चाहिए और किस समय पर उसको एक स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं, मुझे इस परिवार में नहीं रहना है। तो उसके लिए मैं समझती हूँ अगर एक लड़की को हम उसकी परवरिश हम इस ढंग से करें कि लड़की की अपनी सूझबूझ भी कुछ होनी चाहिए कि हर बार हम उसको ये बोल देते हैं कि नहीं आपको एडजस्ट करना है, नहीं कोशिश करो। तो
यहाँ पे मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी मिसेज वाली, समय कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? मान लीजिए एक लड़की की शादी को 5 महीने हुए हैं और उसे ऐसा लगता है कि अब मैं इस परिवार में नहीं रह सकती हूँ, और एक ऐसी औरत है जो शायद 15 साल की शादी के बाद महसूस करती है अब मैं इस परिवार में नहीं रह सकती हूँ, समय कितनी बड़ी भूमिका निभाता है?
देखिए जैसे ही किसी लड़की के दिमाग में ये बात आती है कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे लगता है तुरंत उस लड़की को अलग हो जाना चाहिए। अब अलग का मैं ये नहीं कहूंगी कि उसको डिवोर्स लेना चाहिए, कुछ देर के लिए दूर रह के और बाहर से समस्या को समझना चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता है ऑन स्पर ऑफ मोमेंट लड़की एक डिसीजन ले लेती है कि नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकती, और वो निकल जाती है और कहती है नहीं मुझे डिवोर्स लेना है। मैं वो नहीं कह रही हूँ, डिवोर्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ अगर एक लड़की को दिमाग में आ रही है ये बात मैं इस परिवार में नहीं रह सकती या मैं इस लड़के के साथ नहीं रह सकती, तो इमीडिएटली उस लड़की को थोड़े दिन के लिए अलग हो जाना चाहिए। अलग होके उसको चाहे वो काउंसलर से बात करे, चाहे वो अपने माँ बाप से बात करे, चाहे वो अपनी फ्रेंड से बात करे, किसी से भी बात करके उसको बाहर रह के समस्या को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो एक ट्राई और दे सकती है, और क्या वो अपने आप को भी थोड़ा बदल सकती है, क्या वो परिवार को किसी दूसरे ढंग से उनको भी बदल सकती है। तो ये एक लड़की के ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है, जो मैं समझती हूँ उसको कैसे एक परिवार ने पाला है, उसके माँ बाप ने उसको क्या शिक्षा दी है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं माँ बाप की ट्रेनिंग को यहाँ पर, एक लड़की को किस तरीके से उसको ट्रेन किया गया है जिंदगी के लिए, जिंदगी की समस्याओं को जूझने के लिए, मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है।
मिसेस अख्तर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बताइए समाज हम ये सब बातें करते हैं कि ठीक है लड़की को अलग हो जाना चाहिए, पर क्या समाज वाकई आज इतना परिपक्व हो गया है? एक औरत जिसकी शादी को 15 साल हो गए हैं और वो वापस आती है तो क्या हम उसे उसी नजरिए से देखते हैं? और एक लड़की जो कि अपनी शादी के शायद एक साल बाद वापस आई है तो क्या हमारा समाज उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार है? क्या वो समाज इतना मैच्योर्ड और इतना परिपक्व हो गया है?
देखिए, जैसे डॉक्टर छवि ने बताया कि हम में से ही समाज बनता है, और जब तक हम अपना कोई भी स्टैंड खुद ना लें तो हम लोग किसी भी समस्या का सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपना डिसीजन हमें खुद लेना है और हमें ये सोचना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। और हाँ, ये बात है कि एक 15 साल जब शादी को हो जाते हैं तो जाहिर है बच्चे भी हों,
बिल्कुल,
तो बच्चों के साथ
इसी परिवेश में आपसे जानना चाहती थी।
तो बच्चों के साथ डिसीजन, बच्चों को लेके डिसीजन बहुत मुश्किल हो जाता है, और कई औरतें समझती हैं कि हमें अब जो भी मुश्किलें हैं हम लोग बर्दाश्त करते रहें क्योंकि अब बच्चे भी हो गए हैं। फिर आगे वो सोचती हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम लोगों का शायद जीना आसान हो जाए।
मिसेस वाली, मैं आपसे जानना चाहूंगी,
उसमें वो रहती हैं और मुझे
जैसे समय लंबा होता है, जैसे समय लंबा होता है शादी का और हमारे सब्र का भी बांध बढ़ता जाता है, हम सोचते हैं अब इतना हमने सह लिया तो चलिए और सही। तो आप बताइए, जब समय की बात हो रही है तो ऐसा कौन सा समय है जब हम सोचें अब ये बांध और नहीं रह सकता, इसे टूट जाना चाहिए?
देखिए, मिसेस अख्तर ने जैसे बोला, मैं समझती हूँ हम हिंदुस्तानी समाज में हम हैं और हिंदुस्तानी समाज में बहुत चेंजेस आने लगी हैं। मैं कह रही हूँ क्योंकि अभी चेंजेस धीरे धीरे आ रही हैं। आज की नारी अपना डिसीजन ले पा रही है कि मैं बच्चों के साथ अपना जीवन जी सकती हूँ क्योंकि मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हूँ, तो वो आज डिसीजन ले लेती है। जो आज से मैं 10 साल या 20 साल पहले, मैं नहीं समझती हूँ कि इतनी नारियाँ अपना डिसीजन ले पाती, तो इसलिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे कि इवन बच्चे भी होते हैं और बच्चों के साथ भी एक औरत एक डिसीजन ले लेती है। और ये एक चेंज है और चेंज बहुत बढ़िया चेंज हिंदुस्तान में आ रही है,
तो हम सब सपोर्ट करेंगे। कि एक ऐसे केस था जहाँ एक औरत 25 साल से बर्दाश्त कर रही थी और उसके हस्बैंड जो थे वो बहुत वायलेंस किया करते थे घर में और मार पिटाई भी बहुत किया करते थे, और जब इनकी बेटी बड़ी हो गई और वो कमाने लगी तो उस बेटी ने ही माँ को प्रोत्साहित किया कि वो उस घर से निकल जाए।
तो ये एक चेंज आपको भी दिख रही
है, बड़ा चेंज है कि उसने अपनी माँ को सपोर्ट किया एंड उसने माँ को हिम्मत दी कि माँ बस बहुत हो गया है।
आई थिंक दिस इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है उसी ने ये बदलाव लाया है।
और अब ब्रिंगिंग भी है उसमें शामिल, क्योंकि पेरेंट्स आजकल बिल्कुल बराबर से पालते हैं बेटे और बेटी को।
मान लीजिए इसी परिवेश में वायलेंस तो है, परेशानी है, समस्या है, पर इस बार परेशान होने वाला आदमी है, औरत नहीं है, तो ऐसे में आप बताइए, डॉक्टर छवि भार्गव से मैं पूछना चाहूंगी कि अगर एक आदमी है जो परेशान है अपनी पत्नी से, तो ऐसे में वो कैसे इस समस्या से जूझ सकता है?
जैसे हम कह रहे हैं कि हम औरतों को कह रहे हैं, वैसे ही आदमी कभी सेम ही रहेगा। दोनों यहाँ पे ये नहीं है कि औरत के लिए अलग होगा और आदमी के लिए अलग, दोनों का ही।
कई बार ऐसा होता है कि औरत आदमी को इतना गुस्सा दिला देती है कि वो प्रवोक हो जाता है कि उस पे हाथ उठाए।
ये तो मैं मानती ही नहीं हूँ कि जब जो आदमी वायलेंस करता है, चाहे वो औरत हो, औरत अपने आदमी को मारे या आदमी अपनी औरत को मारे, अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो दोनों जगह गलत है। वायलेंस किसी चीज का आंसर नहीं है, चाहे आप बच्चे को एक थप्पड़ मारो, आप खुद देखो ना, अगर हम किसी को इक्वल ट्रीट करेंगे तभी तो हम हाथ नहीं उठाएंगे ना। अगर हम ये सोचते हैं कि दूसरा है वो लेस समझदार है या ये ज्यादा बेवकूफ है, जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे बिलीफ्स और एटीट्यूड का ही तो नतीजा है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि एक आदमी बेवकूफ है या एक औरत बेवकूफ है, उसे थप्पड़ से ही समझ आएगा, ये तो किसी चीज का जवाब ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता।
हाँ, जैसे डॉक्टर छवि ने कहा कि वायलेंस किसी चीज का जवाब हो ही नहीं सकता है, चाहे प्रोवोकेशन कितना भी बड़ा हो हाथ तो नहीं उठाया जा सकता है। चाहे वो लेडी लड़की कितना भी प्रोवोक कर रही हो अपने हस्बैंड को, अगर हाथ उठाता है देन दैट पर्सन इज इनसेन, वी कांट कॉल द पर्सन नॉर्मल, सो दैट ऑल्सो इज अ प्रोवोकेशन एंड दैट टाइम द गर्ल हैड द राइट टू थिंक अबाउट कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप।
मुझे लगता है ये आप नैगिंग वाइफ्स की शायद बात कर रही हैं, जिसमें एक औरत जो है वो बहुत प्रोवोक करती है एक आदमी को और इस लेवल तक प्रोवोक करती है कि वो हाथ उठाता है। बट ये जरूरी नहीं है कि प्रोवोकेशन के टाइम पे आदमी ही हाथ उठाता है, बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि अगर एक नैगिंग वाइफ होती है तो तो वो ही नैगिंग करते करते गुस्से में वो ही हाथ उठा लेती है। तो हाथ उठाना तो दोनों तरफ से, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, हाथ उठाना एक क्राइम है, चाहे वो औरत उठाती है या आदमी उठाता है। तो ऐसे देखा गया है, ये जरूरी नहीं है कि आदमी ही हमेशा हाथ उठाता है। और आजकल इतना ज्यादा बोला गया है औरतों के बारे में और औरतों के राइट्स के बारे में इतना बोला गया है, तो एक बेचारा आदमी जो है वो अपनी बात इतनी खुलेआम नहीं बोल पा रहा है कि ऐसी औरतें भी हैं जो उनको मारती हैं। तो ये मारना जो है हर दोनों तरफ से, हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ से इट इज अ क्राइम।
तो ये भी कहूंगी कि मारना ही नहीं, मेंटल टॉर्चर भी इक्वली है। कई बार कोई जना हाथ नहीं उठाता है, लेकिन वो आपको मेंटली इतना टॉर्चर कर देता है, इमोशनली इतना टॉर्चर कर देता है कि वो भी इक्वली है। जरूरी नहीं है कि चोट बाहर ही दिखे,
अंदर भी तो यही आ जाता है कि अगर नैगिंग वाइफ है तो
वो मेंटल टॉर्चर ही है,
तो भी काउंसलिंग की जरूरत है।
Exactly.
तो भी परिवार को इंटरवीन करने की जरूरत है।
वो नॉर्मल
परिवार के लोग बैठे, इस समस्या को तब भी सुलझाया जा सकता है। जैसे अगर एक औरत के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, इसी तरीके से अगर एक लड़के के ऊपर या एक आदमी के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, तब भी पूरे परिवार को बैठना चाहिए और उस समस्या का समाधान करना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है, परिवार से नहीं हो रहा है, तो स्पेशल हेल्प लेनी चाहिए फ्रॉम काउंसलर्स, फैमिली काउंसलर्स, मैरिज काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, इनसे हेल्प लेनी चाहिए।
हाँ, विक्टिम और विक्टिमाइजर का जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे सोसाइटी में, ये रहेगा तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो इसके लिए आजकल के सोसाइटी में हम लोग काउंसलिंग को महत्व देते हैं। तो विक्टिम और विक्टिमाइजर, यही स्टैंड पर आजकल के सारे रिलेशन चलते हैं।
एक जोर मैं यहाँ पर दूंगी कि फैमिली में माँ बाप, जब एक कपल माँ और बाप बनता है, तो मुझे लगता है काउंसलिंग की वहाँ पर भी जरूरत है। क्योंकि माँ बाप की काउंसलिंग, उसको किस तरीके से एक बच्चे को पालना है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि कल को उनका बच्चा एक समाज का कैसा इंसान बनता है, वो एक माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है। तो एक माँ बाप की जब शादी होती है, तो मुझे लगता है एक माँ बाप की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। शादी के टाइम पे बताया जाना चाहिए दोनों को किस तरीके से अपने आने वाले बच्चों को, आने वाले बच्चे को पालना है, ताकि वो एक समाज का एक अच्छा इंसान बन सके, चाहे वो आदमी है या वो औरत है।
पर वो वैल्यू सिस्टम भी तो है जो हमें ये सिखाती है, हमेशा काउंसलिंग की जरूरत नहीं होती मैम। वैल्यू सिस्टम हमारी ये बताते हैं कि हमें किस तरह के बच्चे बनाते
होता है। काउंसलिंग का क्या मतलब?
हाँ,
है काउंसलिंग में वैल्यू सिस्टम ही बताया जाता है।
बिल्कुल,
काउंसलिंग में यही बोला जाता है, देखो ये एक परिवार है, परिवार को दोनों को मिलजुल के आपको अपना रोल प्ले करना है। एक माँ को माँ का रोल प्ले करना है, एक बाप को बाप का रोल प्ले करना है।
अपना रोल नहीं पूरा कर रहे हो तब काउंसलर की जरूरत आती है।
काउंसलिंग का मतलब इसमें एक और चीज है कि वैल्यूज जो हैं वो सोसाइटी के बड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं। कई जैसे हम ये है कि नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, ये हमारे बिलीफ्स और वैल्यूज से आया है। लेकिन एक काउंसलर जो होता है वो न्यूट्रल रहता है। वो एक चीज इसलिए स्पेशलाइज या वो ट्रेंड होता है कि वो हर चीज को कल्चरल बायस, जिसे हम कहते हैं, या कल्चरली लोडेड वैल्यूज हैं, उससे अलग देखे, सिचुएशन को एज फैक्ट्स और सामने रख के तब डील करता है। इसलिए एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग, वरना तो वैल्यूज के बेसिस पे तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको ज्यादा अच्छी राय दे देंगे कि ये सही है ये गलत है। प्रॉब्लम यहीं से आती है, सही और गलत।
बट आई थिंक वैल्यूज का आप ये मतलब नहीं समझते हैं कि वैल्यूज होती ही वो चीजें हैं जो राइट एंड रॉन्ग को
राइट एंड रॉन्ग के पर्सपेक्टिव्स भी बहुत होते हैं। जैसे कि हर चीज का पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन जो एक ग्लोबल यूनिवर्सल वैल्यूज है वो एक पर्सपेक्टिव में ही देखते हैं। जैसे कई बार ये होता है, हम ये सोचते हैं कि ये कोई भी चीज जो गलत है, कई बार सोसाइटी में उसको गलत नहीं मानते। अब जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग कई चीजें वो सोच भी नहीं सकते कि एक 30 साल की लड़की भी अपने पेरेंट्स के पास जाएगी कि मैं यहाँ कर लूँ या नहीं कर लूँ।
ये वैल्यू कल्चर पे भी निर्भर होते हैं, वो तो
कल्चरल वैल्यूज है, उनसे अलग हटके। क्योंकि जो अपनी पर्सनल इंडिविजुअल वैल्यूज या जो हम कहते हैं ग्लोबल ह्यूमन वैल्यूज, वो तभी आएंगी जब आप कल्चर को छांट लोगे, छलनी से छानना पड़ता है, तब अपनी वैल्यूज आती है। तो ये तो हमें कोई ट्रेनिंग भी नहीं देता इस तरह, तब
डिसीजन मेकिंग तभी आता है।
और ये भी एक और बात है कि जब जैसे किसी ने इंडिविजुअली कोई डिसीजन लिया, तो माँ बाप कहेंगे या कोई और बुजुर्ग कहेगा, हमसे तो पूछा ही नहीं।
हाँ, ये सोशल चीजें है ना हमारी,
दैट यू हैव टू डील विद। डिसीजन मेकिंग का एक ये भी है कि अपोजिशन को कैसे हैंडल करना है।
मुझे लगता है काउंसलिंग भी वैल्यूज के ऊपर ही होती है। अगर आप टू सेंस में देखा जाए, जब एक एज अ मैरिज
काउंसलर यूनिवर्सल वैल्यू,
यूनिवर्सल वही वैल्यूज होती हैं मेरे हिसाब से। आप कस्टम्स को
नहीं,
एक कस्टम होता है वो अलग चीज होती है, और एक वैल्यूज, वैल्यूज हमेशा ह्यूमैनिटी के साथ रिलेट कर जाती है।
वैल्यूज जो रिलीजियस वैल्यूज ही बोलते हैं उनको, रिलीजियस कस्टम्स नहीं बोलते। एज एजुकेटेड पीपल वी मे से कि वो कस्टम्स हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे रिलीजियस कस्टम्स ही हैं वही डिक्टेट करते हैं ना। वरना आप, आपके घर जो आपकी सर्वेंट मेड आती है, आप उसको अपनी टेबल पे क्यों नहीं बैठाते? यूनिवर्सल वैल्यू सेज एवरीबॉडी इज इक्वल, बट यू डोंट ट्रांसलेट इट। तो ये चीजें हैं, इसलिए एक चीज, एक प्रोफेशनल की जरूरत वहां पर, क्योंकि मैरिज में तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एक चीज नहीं होती है। कई बार सब दो इंसान जो अलग अलग रह के इतने अच्छे इंसान है, उनके फ्रेंड्स कहेंगे ये ऐसा, साथ रह के जो चीजें आती हैं एक कपल की तरह, वो अलग ही इश्यूज होते हैं। तो उसके लिए तेरा कितने लेवल्स पे इंटरेक्शन होता है, सेक्सुअल लेवल है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। हमें कुछ पढ़ाया नहीं जाता, बच्चों को हम ऐसे ही बड़ा कर देते हैं और कहते हैं वो अपने आइडियाज सिनेमा,
टॉलरेंस लेवल टुवर्ड्स ईच अदर,
सिनेमा से हमने बहुत आइडियाज लिए हैं। हमें पता है कई बार जो हमारे आइडियाज होते हैं, अब जैसे फॉर इंस्टेंस रोमांस का हमारा अपना आइडिया है, किसी ने बताया थोड़ी कि रियलिटी व्हाट हैपेंस बिफोर मैरिज, यू नेवर नो, यू एक्सपीरियंस इट, बट समटाइम्स उसमें ही प्रॉब्लम हो जाती है।
नाउ इन स्कूल्स दे आर लेइंग स्ट्रेस ऑन दिस,
तो इसलिए ये सब चीजें जरूरी है।
आप सब हमारे स्टूडियो में आए, आपकी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।